पृष्ठ संख्या 362 अध्याय 15 सिंधु सभ्यता नामकरण एवं खोज का इतिहास। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में भारत की कांस्य काल की प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ था, जिसको सामान्यतः सिंधु सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। हड़प्पा नामक पुरास्थल से सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिश्र की प्राचीन सभ्यताओं की समकालिक थी। यद्यपि चार्ल्स मसून ने सन 1826 में हड़प्पा नामक स्थान पर स्थित विशाल टीलों के विषय में लिखा था, लेकिन उस समय किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। इस सभ्यता की जानकारी अप्रत्याशित एवं आकस्मिक ढंग से हुई। सन 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए गिट्टियों तथा रोडो बैलेस्ट की आवश्यकता हुई। जॉन विलियम ब्रंटन ने ईंटों के टुकड़े प्राप्त करने के लिए हड़प्पा के प्राचीन टीलों से ईंटें खोदकर निकालने का निर्णय किया। ईंटें निकालते समय कतिपय प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुईं, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेयर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा गया। कनिंघम ने सन 1853 एवं 1856 में यहाँ का दौरा किया, लेकिन वे इस सभ्यता के महत्व को नहीं आंक सके। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का पुनरन्वेषण किया। इस अन्वेषण से यह ज्ञात हुआ कि एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता के पुरावशेष हड़प्पा के इन टीलों में छिपे हुए थे। अगले वर्ष सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहन जोदड़ो के टीलों का पता लगाया। साहनी और बनर्जी के प्रतिवेदनों के फलस्वरूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल का ध्यान इस अज्ञात नामा सभ्यता के महत्व की ओर पहले पहल आकृष्ट हुआ। पृष्ठ संख्या 363। मोहन जोदड़ो के टीलों पर उत्खनन कार्य का संचालन सन 1922 से 30 तक जॉन मार्शल ने केएन दीक्षित एवं हरग्रिप्स तथा सनाउल्लाह आदि सहयोगियों की सहायता से किया। मार्शल के कार्य को अर्नेस्ट मैके ने सन 1931 तक चालू रखा। तत्पश्चात मार्टिमर व्हीलर पाकिस्तान के नवगठित पुरातत्व विभाग के जब निदेशक हुए, तब सन 1950 में मोहन जोदड़ो के टीलों पर सीमित पैमाने पर उन्होंने उत्खनन कराया। पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के अमेरिकी पुराविद जॉर्ज एफ दिल्स ने सन 1963-64 में अपेक्षाकृत सीमित पैमाने पर वहां पर उत्खनन कराया। हड़प्पा के टीलों पर जॉन मार्शल के नेतृत्व में माधव स्वरूप वत्स ने सन 1923-34 के मध्य उत्खनन कराया। इसके पश्चात सन 1946 में मार्टिमर विलन ने सीमित पैमाने पर किंतु महत्वपूर्ण उत्खनन हड़प्पा के पश्चिमी गढ़ी टीले की रक्षा प्राचीर का स्वरूप ज्ञात करने तथा रक्षा प्राचीर एवं समाधि R37 के बीच क्या संबंध है यह जानने के लिए कराया था। स्वतंत्रता के पूर्व जिन अन्य पुराविदों ने सैंधव सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनमें एनजी मजूमदार तथा आरएल स्टाइन के नामों का उल्लेख किया जा सकता है। मजूमदार ने सन 1927 से 31 के मध्य सिंध प्रांत को अपनी पुरातात्विक गतिविधियों का केंद्र बनाया। चान्हू दड़ो, गाजी शाह, लौंडी, अली मुराद, आमरी, झुकर, झांगर एवं त्रिहीन नामक महत्वपूर्ण पुरास्थलों को खोज निकाला। आरएल स्टाइन ने बलूचिस्तान के क्षेत्रों का सन 1926-28 के बीच व्यापक सर्वेक्षण किया और सुतकागेन डोर, शाही टुम्प, कुल्ली, मेही, नुंदरा, डाबरकोट, पेरियानु, गुंडई, राणा गुंडई, मुगल गुंडई तथा सुर जंगल आदि पुरास्थलों की खोज किया था। सन 1931 में आर्थिक मितव्ययिता के परिणाम स्वरूप शासकीय स्तर पर पुरातात्विक अन्वेषण कार्य लगभग बंद कर दिया गया। गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से तथापि कुछ कार्य होते रहे। अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज तथा बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वावधान में ईजे एच मैके ने सन 1935-36 में चानू दड़ों का उत्खनन कराया। सन 1943 के पश्चात भारत तथा पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थलों की खोज का कार्य चलाया गया, जिसके उत्साहजनक परिणाम निकले। भारत के महत्वपूर्ण स्थानों में राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल, रंगपुर, कच्छ जिले में स्थित सुरकोटदा तथा धौलावीरा उल्लेखनीय है। पंजाब के रोपड़ जिले में विद्यमान रोपड़, हरियाणा पृष्ठ संख्या 364 के हिसार जिले में स्थित बड़ाबली, कुड़ाल, जिंद जिले में स्थित राखीगढ़ी एवं भिवानी जिले के अंतर्गत मिताथल महत्वपूर्ण सैंधव पुरास्थल हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीर और सहारनपुर जिले में स्थित हुलास की गणना महत्वपूर्ण खोजों में की जाती है। पाकिस्तान में सन 1950 के बाद जो पुरातात्विक अन्वेषण हुए हैं, उनके आधार पर सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। बलूचिस्तान में सोतका कोह, सिंधु प्रांत में कोट दीजी और पंजाब में डेरा इस्माइल खाल, जलीलपुर, रहमान डेरी एवं गुमला आदि उल्लेखनीय पुरास्थल हैं। अफगानिस्तान में मुंडीगाक और सोरतू गई सिंधु सभ्यता से संबंधित दो महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं। प्राक सैंधव संस्कृतियां। भारत एवं पाकिस्तान के जिन क्षेत्रों में कालांतर में सिंधु सभ्यता विकसित हुई, उनके आसपास के क्षेत्रों में उसके पूर्व ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। कालक्रम की दृष्टि से ये ग्रामीण संस्कृतियां सिंधु सभ्यता की पूर्ववर्ती मानी जाती है। इन ग्रामीण संस्कृतियों को प्राक सैंधव संस्कृति अथवा प्राक हड़प्पा संस्कृति प्रायः कहा जाता है। पाकिस्तान के पुराविद मोहम्मद रफीक मुगल ने इनको प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति अर्ली हड़प्पन कल्चर नाम दिया है। ताम्र पाषाण काल की इन संस्कृतियों का महत्व इस बात से निहित है कि कतिपय पुराविदों ने सिंधु सभ्यता का मूल उत्स इनमें खोजने की चेष्टा किया है, क्योंकि अनेक पुरास्थलों पर इन संस्कृतियों के अवशेष निचले स्तरों से मिले हैं तथा उनके ऊपरी स्तरों से सिंधु सभ्यता के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। प्राक सैंधव संस्कृति के विषय में जानकारी के लिए प्राप्त साक्ष्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक, पुरास्थलों के ऊपरी धरातल सरफेस से प्राप्त साक्ष्य। दो, पुरास्थलों से के उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष एवं पुरानिधियां। दक्षिणी अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब तथा सिंध प्रांतों और भारत के उत्तरी राजस्थान में स्थित पुरास्थलों से प्राक सैंधव संस्कृतियों के संबंध में अभी तक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रमुख पुरास्थलों में दक्षिण अफगानिस्तान के में स्थित मुंडीगाक एवं देह मुरासी गुंडई, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित नाल किले गुल मोहम्मद, तंब सदात, पेरियानु गुंडई, अंजीरा, स्याह दम्ब पृष्ठ संख्या 365, नुंदरा कुल्ली, मेही, फिराक दम्ब तथा मेहरगढ़ का उल्लेख किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त आमरी, कोट दीजी आदि सिंध प्रांत में और हड़प्पा, सरायखोला एवं जलीलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित पाकिस्तान के उल्लेखनीय पुरास्थल हैं। भारत में अभी तक उत्तरी राजस्थान में स्थित कालीबंगा तथा हरियाणा में बड़ावली एवं राखीगढ़ी नामक पुरास्थलों के उत्खनन के प्राक सैंधव पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मृदभांड मृदभांडों के आकार प्रकार एवं उन पर प्राप्त अलंकरण अभिप्रायों के आधार पर प्राक सैंधव संस्कृतियों को पुराविदों ने अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों में विभाजित किया है। क्वेटा, आमरीनाल, कुल्ली, जाब एवं सोथी आदि। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण प्राक सैंधव इन संस्कृतियों में परस्पर आदान प्रदान की गति बहुत क्षीण रही है। स्टुअर्ट पिगट नामक विद्वान ने बलूचिस्तान एवं सिंध की संस्कृतियों का वर्गीकरण मृदभांडों पर प्राप्त चित्रण अभिप्रायों के आधार पर प्रमुख दो वर्गों में किया है। एक पांडु रक के मृदभांड बफवेयर वाली दक्षिणी क्षेत्र की संस्कृति, दो लाल रंग के मृदभांड रेडवेयर वाली उत्तरी क्षेत्र की संस्कृति। पांडु रंग की मृदभांड संस्कृति का उपविभाजन निम्नलिखित तीन स्थानीय संस्कृतियों में किया गया है। अ क्वेटा संस्कृति द क्वेटा कल्चर, ब कुल्ली संस्कृति द कुल्ली कल्चर, स आमरी नाल संस्कृति द आमरी नाल कल्चर। लाल रंग के मृदभांड संस्कृति को जबकि लाल रंग की मृदभांड संस्कृति को जॉब संस्कृति द जॉब कल्चर नाम दिया गया है। कुमारी बैटरीज द कार्टी, मिस बैटरीज दे कार्डी मध्य बलूचिस्तान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पिग्गर द्वारा प्रस्तावित यह विभाजन बहुत उपयुक्त एवं संगत नहीं है। पांडु रंग के मृदभांड बलूचिस्तान में दक्षिण पश्चिम में ही नहीं सिंध तक मिलते हैं। इसी प्रकार लाल रंग के मृदभांड कलात तक प्राप्त हुए हैं। मुंडी गाक और आमरी नामक पुरास्थलों के उत्खननों से भी उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि हुई है। इस प्रकार कतिपय पुरास्थलों पर पांडु और लाल दोनों ही रंगों के मृदभांडों पर एक ही तरह के अलंकरण अभिप्राय संजोए गए हैं। मुंडी गाक, कोटदीजी और कालीबंगा के उत्खननों से प्राप्त प्राक सैंधव मृदभांड परंपरा से भी यही इंगित होता है कि मृदभांडों के आकार प्रकार एवं अलंकरण अभिप्रायों के आधार पर विभिन्न स्थानीय और क्षेत्रीय संस्कृतियों में इनका स्पष्ट रूप से विभाजन संभव नहीं है। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पहाड़ियों तथा नदियों ने इन संस्कृतियों के निर्माताओं के पारस्परिक संपर्क में व्यवधान स्थापित किए। इसीलिए प्राक सैंधव ग्राम्य संस्कृतियों के पुरावशेषों में पर्याप्त विविधता एवं स्थानीयता दृष्टिगोचर होती है। पृष्ठ संख्या 366। क्वेटा संस्कृति पांडुरंग। क्वेटा संस्कृति पांडुरंग गुलाबी लिए सफेद रंग के मृदभांड इस संस्कृति की विशेषता है। क्वेटा के आसपास के टीलों पर इस प्रकार के मृदभांड प्रारंभ में प्राप्त हुए। कालांतर में मिस बैट्रिस द कार्डी ने क्वेटा के दक्षिण की ओर सिंधु के मैदान तक इस प्रकार के मृदभांडों की खोज की जिन्हें कतिपय खास विशेषताओं के कारण टोगाउ नामक पुरास्थल के नाम पर टोगाउ मृदभांड नाम प्रदान किया गया। किले गुल मोहम्मद, दंत सादात, पिराग दम्ब, एडित शहर आदि प्रमुख पुरास्थल हैं। पांडुरंग के मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। ज्यामितीय अलंकरण अभिप्राय मुख्य रूप से मिलते हैं। पशु पक्षियों का चित्रण दुर्लभ है। मंद गति के चाक पर मृदभांडों का निर्माण किया गया है। प्रमुख मृदभांड प्रकारों में जामदानी, बीकर, कटोरे बाउल्स, छिछली थालियां, सैलो डिशेस आदि प्रमुख हैं। चर्ट प्रस्टर के ब्लेड, सिलखड़ी के प्याले, हड्डी के बेधक एवं माता देवी की मृण मूर्तियां आदि अन्य उल्लेखनीय पुरावशेष हैं। कुल्ली संस्कृति दक्षिण बलूचिस्तान के पांडु रंग के मृदभांडों की दूसरी प्रमुख संस्कृति को कुल्ली संस्कृति कहा जाता है। बलूचिस्तान के कोलवा जिले के कुल्ली पुरास्थल के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। यहाँ पर आरएल स्टाइन ने अन्वेषण किया था। में ही इस संस्कृति का एक अन्य महत्वपूर्ण पुरास्थल है। रेखाचित्र एक मुंडी गाक चित्रित मृदभांड सौजन्य कजाल 1964। पृष्ठ संख्या 367। रेखाचित्र दो कुल्ली लाल रंग से चित्रित मृदभांड सौजन्य पिगट 1950। कुली संस्कृति के मृदभांडों का विभाजन दो प्रमुख वर्गों में किया जा सकता है, एक कुली मृदभांड, दो हड़प्पा प्रकार के मृदभांडों के साथ प्राप्त कुली पात्र प्रकार। कुली संस्कृति में कतिपय सादे एवं अधिकांशतः अलंकृत मृदभांडों की बाहरी सतह के ऊपरी हिस्से में वृक्षों से घिरे हुए दीर्घीकृत ककुदमान वृषभ की एक विशिष्ट प्रकार की चित्रवल्लरी बनी हुई प्रायः मिलती है। बैल की आंखें एक वृत्त के माध्यम से निर्मित है और उसके पैरों के बीच में हिरणों, जंगली बकरों की छोटी छोटी आकृतियां एक कतार में बनी हुई हैं। अन्य अलंकरणों में पुष्प गुच्छ, त्रिकोण, लटकन, ओमेगा जैसे अभिप्राय उल्लेखनीय हैं। प्रमुख पात्र प्रकारों में जामदानी, बोतल नुमा पात्र, छिछली थालियां, साधा दस्तरियां, छिद्रित पात्र, खड़ी बारी वाले कटोरे, स्ट्रेट साइडेड कप, पृष्ठ संख्या 368 तथा मटकों की गणना की जा सकती है। साधारण तस्तरियां एवं बेलना का छिद्रित पात्र संदर्भ पात्र परंपरा के प्रभाव के द्योतक हैं। चर्ट के ब्लेड, सील लोड़े, मिट्टी के चूड़ियां में ही की एक कब्र से प्राप्त सिर रहित स्त्री की आकृति से युक्त मूठ वाला ताम्र दर्पण आदि अन्य महत्वपूर्ण पुरावशेष हैं। विभिन्न आभूषणों से सजी धजी कुली की नारी की मृण मूर्तियों को धड़ के नीचे चिपटा बनाया गया है और उनके हाथ केहनी से मुड़े हुए हैं। इन मृण मूर्तियों का निर्माण संभवतः धार्मिक प्रयोजन से किया गया था। आड़ी तिरछी रेखाओं से अलंकृत ककुदमान वृषभ मूर्तियां भी विशेष महत्वपूर्ण हैं। रेखाचित्र 3 कुल्ली पशु आकृतियों से युक्त चित्रित मृदभांड सौजन्य पिगट 1950। कुली संस्कृति के लोग अपने मकानों का निर्माण अनगढ़ पत्थरों के से बिना गारे के सूखी चिनाई एसलार द्वारा करते थे। पत्थरों की दीवारों पर सफेद पलस्तर लगाने के प्रमाण भी मिलते हैं। कमरों की रूपरेखा और सीढ़ियों के साक्ष्यों से इंगित होता है कि कुछ मकान दुमंजिले होते थे। मेही में मिट्टी की कच्ची ईंटों का प्रयोग मकान बनाने के लिए किया गया था। कुली संस्कृति में मृतकों के दाह संस्कार एवं दफनाने की प्रथा थी। कुली पुरास्थल पर दाह संस्कार और मेही में दफनाने के प्रमाण मिले हैं। मेही में अस्थि कलशों अंश के साथ तांबे के दर्पण मृदभांड मृण मूर्तियां तांबे की दो पीने प्राप्त हुई हैं। आमरी नाल संस्कृति पांडु रंग के मृदभांडों की तीसरी संस्कृति आमरी नाल के नाम से प्रसिद्ध है। इस संस्कृति का प्रसार दक्षिण बलूचिस्तान से सिंध तक मिलता है। आमरी की खोज एवं सर्वेक्षणात्मक उत्खनन एनजी मजुमदार ने सन 1929 में किया था। कालांतर में जेएम कजाल ने सन 1959-61 में यह अपेक्षाकृत विस्तृत पैमाने पर उत्खनन कराया, जिसके परिणाम स्वरूप 5 कालों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। इनमें से प्रथम 4 काल आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। प्रथम काल की 4 उपकालों में विभाजित किया गया है। प्रथम उपकाल के अधिकांश मृदभांड हस्त निर्मित हैं। चाक निर्मित मृदभांडों के पृष्ठ संख्या 369 किनारे पतले आकार के हैं। काले रंग से ज्यामितीय अलंकरण अभिप्राय संजोए गए हैं। अन्य पुरावशेषों में प्रस्तर के फलक, गोलियां, मिट्टी के मनके एवं तांबे के एक टुकड़े का उल्लेख किया जा सकता है। द्वितीय उपकाल में चाक निर्मित मृदभांडों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित होती है। नवीन अलंकरण अभिप्रायों में सिग्मा, चेक, लटकन, हीरक तथा हिरण के सिंह आदि की गणना की जा सकती है। साधारण दस्तरियां, हड्डी तथा चर्ट के उपकरण भी मिलते हैं। प्रथम उपकाल में भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के विषय में साक्ष्य नहीं मिलते हैं। द्वितीय उपकाल में कच्ची ईंटों का प्रयोग मकान बनाने के लिए किया जाने लगा था। तृतीय उपकाल आमरी के विकास का चरमोत्कर्ष काल है। मृदभांडों पर द्विरंगी तथा तिरंगी चित्रण मिलते हैं। चतुर्थ उपकाल में बैल एवं मत्स्य शल्क डिजाइन का प्रयोग मिलता है। कतिपय सैंधव पात्र परंपरा मिलते हैं। द्वितीय काल में भी आमरी प्रकार के मृदभांड चलते रहे, लेकिन सैंधव मृदभांडों की संख्या में वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। तृतीय काल सैंधव सभ्यता का है। तृतीय काल के प्रथम चरण में रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। तृतीय काल के प्रथम तीन उपकाल सिंधु सभ्यता से और चौथा उपकाल झूकर संस्कृति से संबंधित है। चतुर्थ काल झांगा संस्कृति का है। पश्चिमी बलूचिस्तान के कलात जिले में स्थित नाल नामक पुरास्थल की खोज और परीक्षणात्मक उत्खनन सन 1925-26 में एच हरग्रिव्स ने किया था। उन्होंने मुख्य रूप से नाल के समाधि क्षेत्र का उत्खनन कराया था। उत्खनन से ज्ञात हुआ कि नाल में विस्तीर्ण समाधान, पूर्ण समाधान तथा आंशिक समाधान का प्रचलन था। नाल में दिक् स्थान पूर्व पश्चिम की ओर था। नाल के समाधान मकानों के अंदर फर्श पर बनाए गए थे। तीन कब्रों के चारों ओर कच्ची ईंटें लगाई गई थी। नाल के समाधानों में अंत्येष्टि सामग्री रखी गई थी, जिसमें मृदभांडों के अतिरिक्त तांबे की वस्तुओं में कुल्हाड़ी, छेनी, छुरा, बसुला आदि तथा आरी आदि उल्लेखनीय है। पंजों में सर्प दबाए हुए गरुड़ की आकृति वाली सिलखड़ी की बनी हुई मुहर की गणना विशिष्ट पुरानिधि में की जा सकती है। इनके अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। नाल के मृदभांड पांडु या गुलाबी रंग के हैं, जिन पर दूधिये रंग की पट्टी स्लिप मिलती है। बहुरंगी पॉलीक्रोन डिजाइनें काले, लाल, दूधिया, नीले और पीले रंगों से बनाई गई हैं। इनमें से केवल लाल रंग पकाने के पूर्व और शेष रंग पकाने के बाद लगाए गए हैं। प्रमुख ज्यामितीय डिजाइनों में सिग्मा कंघी के प्रतिरूप, हीरक, प्रतिच्छेदी वृत्त और जीव जंतुओं तथा पशुओं में मछली, बिच्छू, सांड, चीते एवं हिरण एवेक्स मिलते हैं। समाधिक क्षेत्र के मृदभांड बहुरंगी है, किंतु आवासीय क्षेत्र डी के मृदभांड बहुरंगी नहीं है। प्रमुख पात्र प्रकारों में अंतर्नत किनारे वाले कटोरे, चित्रित बेलनाकार पेटिका और पेनीदार पात्र मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। पृष्ठ संख्या 370। आमरी नाल संस्कृति के मृदभांडों के कतिपय चित्रण अभिप्राय तथा आकार प्रकार ऐसे हैं जो केवल आमरी से मिले हैं, लेकिन नाल में जिसका अभाव मिलता है। रेखाचित्र 4 आमरी चित्रित मृदभांड सौजन्य कजाल 1964। आमरी के मृदभांडों में उदाहरण के लिए चित्रण में लाल एवं काले रंग का प्रयोग मिलता है। नाल में इन दोनों रंगों के अतिरिक्त पीले, नीले एवं हरे रंगों का उपयोग मिलता है। आमरी के मृदभांडों पर जीव जंतुओं और पशुओं का अंकन दुर्लभ है, जबकि नाल के पात्रों पर बिच्छू, मछली, हिरण एवं सांड का चित्रण मिलता है। दोनों ही पुरास्थलों के मृदभांड चाक निर्मित हैं, जिन पर एक दूसरे को काटते हुए त्रिभुज, समानांतर रेखाएं, हीरक, पाश, लूप्स, सिग्मा आदि डिजाइनें समान रूप से मिलती हैं। द्विरंगी अलंकरण की परंपरा सिंध प्रांत के मैदान में स्थित आमरी तथा बलूचिस्तान के गिरिपादों पर स्थित निचले क्षेत्रों में स्थित पुरास्थलों पर केंद्रित थी। इसके विपरीत बहुरंगी अलंकरण परंपरा नाल आदि उच्च क्षेत्रों में स्थित पुरास्थलों तक ही सीमित थी। नाल तथा अफगानिस्तान के मुंडीगाक नामक पुरास्थल पृष्ठ संख्या 371 के मृदभांडों में कुछ समानता मिली है। बहुरंगी अलंकरण वाले पेटीदार, पेंदीदार और मछली की डिजाइन वाले कटोरे मुंडीगाक से प्राप्त हुए हैं। ये दक्षिणी अफगानिस्तान के बलूचिस्तान में प्रभाव के द्योतक माने जा सकते हैं। नाल में मकानों के निर्माण के लिए पत्थरों की दीवारें बनाई जाती थी। अनगढ़ और नदी से प्राप्त किए गए चिकने पत्थरों का प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता था। नाल के आवासी डी क्षेत्र में बिना किसी क्रम या विन्यास के मकान बने हुए थे। नाल से प्राप्त अन्य पुरावशेषों में अगेट, कार्नेलियन, शंख और चूना पत्थर के बने मनके, तांबे की थप्पा वाली मुहरे, स्टेम सील तथा तांबे के उपकरण, छिद्रित प्रस्तर बाट, परफोरेट स्टोन वेट की गणना की जा सकती है। आमरी और नाल से पशु एवं नारी मृतमूर्तियां नहीं प्राप्त हुई हैं। जॉब संस्कृति लाल रंग के मृदभांडों पर काले रंग के सजाए गए अलंकरण अभिप्रायों वाली जॉब संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तरी बलूचिस्तान में जॉब नदी की खाती तक सीमित होते हुए भी बोलन दर्रे के उत्तर पश्चिम में स्थित पिशीन लई तक दक्षिण की ओर मिलता है। जवाब संस्कृति के प्रमुख पुरास्थलों में राणा गुंडई, मुगल गुंडई, पेरियानो गुंडई, सुरजंगल, डाबरकोट, कौदानी का उल्लेख किया जा सकता है। दक्षिणी बलूचिस्तान और सिंध की तुलना में इस क्षेत्र में पुरास्थलों की संख्या कम है। राणा गुंडई और किले गुल मोहम्मद के उत्खनन से ज्ञात पुरावशेषों के आधार पर इस संस्कृति की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रिगेडियर रॉस द्वारा उत्खनित राणा गुंडई से प्राप्त पुरावशेषों को स्टीवर्ट पिगट ने 5 संस्कृतियों सांस्कृतिक कालों नीचे से ऊपर की ओर में विभाजित किया है। प्रथम काल के पुरावशेषों में अनलंकृत हस्तनिर्मित मृदभांड, फ्लिंट के लघु पाषाण उपकरण, हड्डी की नुकीली सुई, नाकेदार सुई, मवेशियों, भेड़ एवं गधे की हड्डियों, खच्चर के 4 दांतों की गणना की जा सकती है। मकान के अवशेष नहीं मिले हैं। द्वितीय काल में चाक पर बने हुए लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं, जिन पर काले रंग से दीर्घीकृत आकार के ककुद, मान, शान तथा हिरण के चित्र बने हुए मिलते हैं। राणा गुंडई में पशुओं के सिंगों और पैरों का दीर्घीकरण वर्टिकल इलोंगेशन किया गया है, जबकि कुली संस्कृति में पशुओं के शरीर को सपाट ढंग से लंबा हॉरिजॉन्टल इलोंगेशन बनाया गया है। पेंदीदार या बिना पेंदी के कटोरे प्रमुख पात्र प्रकार हैं। ईरान के हिसार नामक पुरास्थल के प्रथम काल से प्राप्त मृदभांडों से समता के आधार पर 4 सहस्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में ईरान के प्रभाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस काल में मकान बनाने के लिए नींव में पत्थर लगाए गए थे। इस संक्षिप्त सांस्कृतिक काल के पश्चात कुछ समय के लिए पुरास्थल संभवतः वीरान हो गया था, क्योंकि सांस्कृतिक निक्षेप नहीं मिलता है। तृतीय काल दीर्घकालिक था, क्योंकि इस काल में आवास एवं मकान निर्माण के 3 चरण दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें पृष्ठ संख्या 372 पूर्ववर्ती काल की परंपरा का सात्यत्य देखा जा सकता है। मृदभांडों की लाल सतह पर लाल रंग से चित्रण की तकनीक इस काल में आरंभ हुई। अनेक रेखाओं की सहायता से बने वर्गों में द्विरंगी विधि का उपयोग भी उल्लेखनीय है। सुरजंगल के प्रमुख आवास की तुलना राणा गुंडई के तृतीय काल से की गई है। सुराही कैरफ के समान लंबे आकार के बर्तन इस काल में बनने लगे। तृतीय काल का अंत संभवतः एक भयंकर अग्निकांड के फलस्वरूप हुआ। राणा गुंडई के चतुर्थ तथा पंचम काल पूर्ववर्ती काल से सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वथा भिन्न एवं सिंधु सभ्यता के बाद के हैं। चतुर्थ काल के मृदभांड तृतीय काल के मिट्टी के बर्तनों से सर्वथा भिन्न प्रकार के हैं। चतुर्थ काल में रुक्ष धूसर पात्र परंपरा के बड़े आकार वाले कटोरों पर सुंदर द्विरंगी अलंकरण के स्थान पर काले रंग से निर्मित सामान्य ढंग के बेल बूटेदार डिजाइन मिलती है। पंचम काल में मृदभांडों के चित्रण की परंपरा भी समाप्त हो गई तथा इसके स्थान पर उभरी हुई या उत्कीर्ण करके नक्काशी की परिपाटी प्रचलन में आई। कौड़ी तथा गेहूं की बाल प्रमुख अलंकरण अभिप्राय है। यद्यपि राणा गुंडई के उत्खनन से नारी तथा पशुओं की मृदमूर्तियां नहीं मिली हैं, तथापि जॉब संस्कृति के अनेक पुरास्थलों जैसे पेरियाना गुंडई, सुरजंगल, मुगल गुंडई, कौदानी और डाबक कोट से प्राप्त मृदमूर्तियों को राणा गुंडई के तृतीय काल से संबंधित किया जा सकता है। केश विन्यास युक्त गले में अनेक कंठहार नेकलेस पहने, आँख के लिए गोल छिद्र एवं कठोर मुख मुद्रा वाली लघु आकार की नारी मृदमूर्तियों को धरण के नीचे नहीं बनाया गया है। ककुद मान सान एवं पेरियानो गुंडई से प्राप्त घोड़े की मूर्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। नारी मृदमूर्तियों और मुगल गुंडई से प्राप्त पाषाण निर्मित लिंग योनि तथा पेरियानो गुंडई से प्राप्त पाषाण के लिंग का संभवतः धार्मिक प्रयोजन था। जॉब संस्कृति के अन्य पुरावशेषों में फ्लिंट के लघु पाषाण उपकरणों, बाड़ाग्रो, सिलखड़ी के प्यालों, पाषाण तथा अस्थि के मनकों, हड्डी की चूड़ियों तथा सुइयों आदि का उल्लेख किया जा सकता है। धातु निर्मित पुरानिधियाँ अत्यल्प संख्या से प्राप्त हुई हैं। पेरियानो गुंडई से तांबे की एक शलाका, एक पिन, डाबाकोट से तांबे का एक टूटा हुआ प्याला तथा सोने की एक पिन की गणना धातु के विशिष्ट पुरावशेषों में की जा सकती है। जाप संस्कृति के कतिपय पुरास्थलों का मृतकों के दाह संस्कार की प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। सूर जंगल पेरियाना गुंडई के मुगल गुंडई से संगोरा शवाधानों के संबंध में जानकारी प्राप्य है। मृतकों को जलाने के बाद उनकी बची पृष्ठ संख्या 373 हुई अस्थियों को चुनकर मिट्टी के बर्तनों में भरकर दफनाने के रिवाज के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। सिंध, पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा की प्राक सैंधव संस्कृतियाँ, बलूचिस्तान और दक्षिण प्रांतों में विकसित ग्राम्य संस्कृतियों के अतिरिक्त 20वीं शताब्दी के 5वें 6वें दशकों में अन्य अनेक ऐसे पुरास्थलों की खोज सिंध, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में की गई है, जहाँ पर सिंधु सभ्यता के नीचे स्थित स्तरों से एक विशिष्ट प्रकार के पुरावशेष उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुए हैं। इन पुरावशेषों का संबंध प्राक सैंधव संस्कृति, प्राक हड़प्पा संस्कृति से जोड़ा जाता है। ऐसे पुरास्थलों में सिंध में कोडीजी, पंजाब में हड़प्पा तथा उत्तरी राजस्थान में स्थित कालीबंगा और हरियाणा में विद्यमान राखीगढ़ी, कुड़ाल एवं बड़ावली का उल्लेख किया जा सकता है। कोडीजी नामक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरास्थल सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से लगभग 40 किमी पूर्व में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। सन 1955 में पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग के निदेशक फजल अहमद ने इसकी खोज की और सन 1955-58 के मध्य यहाँ पर उत्खनन कराया। उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ पर दो संस्कृतियों के अस्तित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, एक प्राक सैंधव कोडीजी संस्कृति, दो सैंधव सभ्यता। कोडीजी के उत्खनन से कुल 16 स्तर प्रकाश में आए हैं, जिनमें से नीचे के 12 स्तरों से प्राक सैंधव, 13वें स्तर से संक्रमणात्मक सामग्री और शेष 3 स्तरों से सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। कोडीजी की प्राक सैंधव संस्कृति का अंत भयंकर दो अग्निकांडों से हुआ। भली भांति तैयार मिट्टी से चाक पर बने पतले एवं सुंदर कोडीजी से प्राप्त मृदभांडों की पृष्ठभूमि गुलाबी से लेकर लाल रंग की है। दूधिया रंग के स्लिप के ऊपर लाल, काले, भूरे एवं सफेद रंगों से बर्तनों की बारी, रिम तथा गर्दन के पास पट्टियां बनाई गई हैं और लहरदार रेखाओं को मिलाकर पात्रों पर अलंकरण किया गया है। इन्हीं से कालांतर में मत्स्य शल्क, फिश स्केल डिजाइन का विकास हुआ, जिसका अंकन बाद में सैंधव पात्र परंपरा में मिलता है। सिंह वाले देवता की आकृति को छोड़कर पशुओं तथा वनस्पतियों का अंकन नहीं मिलता है। प्रमुख पात्र प्रकारों में बिना बारी वाले, रिमलेस तथा बारी से युक्त घड़े, कटोरे, साधार दस्तरियां आदि उल्लेखनीय हैं। अन्य पुरावशेषों में चर्ट के ब्लेड, कतिपय पर्णाकार बाड़ाग्र, लीप सेप्ड एरो हेड्स, प्रस्तर के सील लोड़े, गोफन पाषाण, मिट्टी एवं शंख की चूड़ियां तथा मृत पिंडो, टेरिकोटा केक्स आदि की गणना की जा सकती है। ककुदमान सांड की एक अत्यंत सुंदर मृणमूर्ति का भी उल्लेख किया जा पृष्ठ संख्या 374 सकता है। तांबे के प्रयोग के साक्ष्य अत्यल्प हैं, माणिक्य के बने हुए मनके नहीं प्राप्त हुए हैं। रेखाचित्र 5 कोट डीजी चित्रित मृदभांड सौजन्य फजल अहमद 1965। भवनों का निर्माण अपेक्षाकृत योजना अनुसार किया गया है। पत्थरों की नींव देकर कच्ची ईंटों से मकानों की दीवारें बनाई गई थी। बस्ती के चारों ओर सुदृढ़ रक्षा प्राचीर का निर्माण किया गया था, जिसके निचले भाग के निर्माण में चूना पत्थर के ढोकों, रबल का तथा ऊपरी हिस्से के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सन 1946 में हड़प्पा के पुरास्थलों की रक्षा प्राचीर का उत्खनन करते समय व्हीलर को सैंधव सभ्यता के नीचे के स्तरों से सैंधव मृदभांडों से भिन्न मृदभांडों के ठीकरे प्राप्त हुए थे। इन मृदभांडों पर लाल या गहरे बैंगनी रंग का लेप था और ऊपरी सतह सादी थी। आड़ी काली धारियां और लटकन के बने अलंकरण बारी के पार्श्व तक सीमित मिलते हैं। रावलपिंडी के निकट पोतबार पठार में स्थित सराय खोला तथा चेनाब एवं रावी नदियों के संगम के निकट स्थित जलीलपुर भी उल्लेखनीय है। इन पुरास्थलों से प्राक हड़प्पन मृदभांड पत्थर के फलक मिट्टी एवं सोने के बने हुए मनके कांस्य उपकरण आदि मिले हैं। पृष्ठ संख्या 375। कालीबंगा प्राक सैंधव संस्कृति केवल सिंध एवं पंजाब के क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उत्तरी राजस्थान में प्राचीन सरस्वती, घग्गर और दृषद्वती चौतंग नदियों की उपत्यकाओं तक इसका प्रसार था। सन 1950-53 के मध्य अमलानंद घोष ने इस क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर के बाएं तट पर स्थित कालीबंगा नामक पुरास्थल सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सन 1959-60 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से ब्रिजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापर ने लगभग 1 दशक तक उत्खनन का संचालन किया। कालीबंगा में 2 टीले हैं। पश्चिम दिशा में स्थित गढ़ी वाले छोटे टीले पर कोटदीजी एवं हड़प्पा की ही भांति सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों के नीचे प्राक सैंधव सभ्यता के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि प्राक सैंधव काल में भी इस टीले की बस्ती 1.90 मीटर चौड़ी रक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी, जिसे बाद में 3.70 मीटर से 4.10 मीटर तक चौड़ी कर दिया गया था। रक्षा प्राचीर के निर्माण में 30x20x10 सेमी आकार की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, जिनका अनुपात 3:2:1 का था। उत्तरी एवं दक्षिणी भुजाओं के मध्य रक्षा प्राचीर की लंबाई 250 मीटर थी, किंतु पूर्वी और पश्चिमी भुजाओं के बीच इसकी चौड़ाई की ठीक से जानकारी नहीं हो सके, तथापि चौड़ाई संभवतः 180 मीटर थी। कालीबंगा की प्राक सैंधव संस्कृति के अधिकांश मृदभांड चाक निर्मित एवं पतली गढ़न के हैं। बीके थापर ने कालीबंगा के प्राक सैंधव मृदभांडों को उनके चित्र 6 कालीबंगा चित्रित मृदभांड सौजन्य थापर 1995। पृष्ठ संख्या 376। आकार प्रकार एवं अलंकरण अभिप्रायों के आधार पर 5 वर्गों A to F में विभाजित किया है। अ वर्ग के पात्रों का रंग लाल तथा गुलाबी है, जिन पर काले और यदा कदा सफेद रंग से चित्रकारी की गई है। मृदभांडों पर सजाए गए प्रमुख अलंकरण अभिप्रायों में चौखानेदार त्रिकोण, मूंछ के आकार के द्विपट, पेड़ पौधे, तितली, बिच्छू, मछली, बत्तख, हिरण, जंगली बकरे एवं सांड आदि हैं। प्रमुख पात्र प्रकारों में पेदीदार और सकरे मुंह के कलश, वर्तुलाकार एवं चिपटी पेंदी के घड़े उल्लेखनीय हैं। ब वर्ग के पात्रों के चाक निर्मित होते हुए भी बाहरी निचले भाग को खुरदरा बनाया गया है। स श्रेणी के पात्र अत्यंत सुंदर गढ़न के हैं। प्रमुख अलंकरणों में मत्स्य शल्क, फिश स्केल उल्लेखनीय है। द वर्ग के पात्रों के भीतरी भाग को उत्कीर्ण अलंकरणों, इंसाइज्ड डेकोरेशंस से तथा बाहरी भाग को रस्सी की छाप से अलंकृत किया गया है। बड़े आकार के मटके तथा कटोरे प्रमुख पात्र प्रकार हैं। ई वर्ग के पात्रों में गुलाबी रंग का प्रलेप स्लिप मिलता है। प्रमुख पात्रों में चषक तथा छोटे छोटे घड़े प्रमुख हैं। वर्ग के बर्तन धूसर रंग के मृदभान ग्रे कलर्ड पोटरी हैं। इस वर्ग के पात्रों में अलंकरण अभिप्राय काले तथा सफेद दोनों रंगों में बनाए गए हैं। प्रमुख पात्र प्रकारों में साधारण तस्तरी, तसला, बेसिन तथा कटोरे हैं। यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि कालीबंगा के प्राक सिंधु स्तरों से सिंधु सभ्यता के विशिष्ट पात्र जैसे चषक या जामदानी एवं बेलना का बहुल छिद्रित पात्र नहीं मिले हैं। कालीबंगा की प्राक सिंधु पात्र परंपरा बनावट एवं अलंकरण की दृष्टि से कोडीजी आमरी हड़प्पा की हड़प्पा आदि से प्राप्त प्राक सिंधु पात्र परंपरा से मिलती जुलती है। अन्य पुरावशेषों में करकेतन गोमेट तथा तामडा पत्थर के लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु काल की सक्खर और रोडी की फ्लिंट की खदानों के विषय में संभवतः जानकारी नहीं थी। तांबा, सिलखड़ी, पत्थर, गोमेद एवं मिट्टी के मनके मिले हैं, लेकिन कांचली मिट्टी और करकेतन के रेखांकित मनके, जो सिंधु सभ्यता की एक विशेषता है, यहाँ पर नहीं मिले हैं। शंख एवं पकी मिट्टी की चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी के पहिए, बैल की खंडित मृणमूर्ति, सिलबट्टे आदि मिले हैं। तांबे की बनी हुई वस्तुओं की संख्या सीमित है। कालीबंगा के प्राक सिंधु प्रथम संस्कृति काल की सबसे विशिष्ट उपलब्धि एक जूते हुए खेत के साक्ष्य को माना जा सकता है। बस्ती के दक्षिण पूर्व की ओर गढ़ी के बाहर स्थित क्षेत्र में यह खेत उत्खनन के परिणाम स्वरूप मिला है। इस खेत में दोनों तरफ से जुताई के फलस्वरूप हराइयों के निशान, एक वर्ग जालक ग्रिड पैटर्न के रूप में पड़े हुए हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर कुण फुरों से कुण का फासला 30 सेमी है। उत्तर से दक्षिण 1.10 मीटर के अंतर पर कुण के निशान पृष्ठ संख्या 377 मिले हैं। संभवतः एक ही खेत में दो फसलों की एक साथ बुआई करने के फलस्वरूप इस प्रकार के कुण के निशान बने होंगे। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल में जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। प्राक सिंधु काल में 5 निर्माण कालों स्ट्रक्चरल फेजेस के प्रमाण मिले हैं। रक्षा प्राचीन निर्माण में प्रयुक्त आकार प्रकार की कच्ची ईंटों का प्रयोग मकानों को बनाने के लिए भी किया गया था। एक मकान में 4-5 बड़े कमरे एवं एक दालान होता था। मकानों के आगे चबूतरे बने होते थे। कमरों की फर्श को चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता था। दीवालों में पलस्तर के साथ क्षय मिले हैं। कमरे के फर्श के ऊपर तथा नीचे बने हुए चूल्हे मिले हैं। मकानों के बीच में खड़ंजा लगी हुई गलियां होती थी। हरियाणा के जिंद जिले में स्थित राखीगढ़ी तथा हिसार जिले में विद्यमान कुड़ाल एवं बड़ावली के उत्खनन से भी सिंधु सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु संस्कृति के अवशेष मिले हैं। मृदभांड बनावट आकार प्रकार तथा चित्रण की दृष्टि से कालीबंगा के प्राक सिंधु मृदभांडों से काफी मिलते जुलते हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राक सिंधु काल की सबसे प्राचीन ग्रामीण बस्तियां दक्षिणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में विकसित हुई। मेहरगढ़ नामक पुरास्थल के उत्खनन से ज्ञात साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि कृषि की प्रक्रिया संभवतः ईसा पूर्व 7वीं सहस्राब्दी में बलूचिस्तान से प्रारंभ हुई। पेटा तथा जौब नदियों की घाटियों में 5वीं-4वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में कृषि जीवन सिंधु नदी की घाटी में सिंध तथा पंजाब के क्षेत्रों में प्रचलित हो गया था। कुछ ही समय बाद सिंधु के मैदान से लगी हुई प्राचीन सरस्वती की घाटी कृषि कर्म की परिधि में आ गई। इन विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पुरास्थलों से प्राप्त मृदभांड कतिपय अपवादों को छोड़कर यद्यपि चौक निर्मित एवं अलंकृत है, तथापि आकार प्रकार बनाने तथा अलंकरण अभिप्राय सजाने सजोने की प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी विशिष्ट शैलियों का प्रचलन था। अनेक तत्वों से युक्त होते हुए भी बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब एवं राजस्थान की इन ग्राम्य संस्कृतियों में आपस में संपर्क एवं आदान प्रदान के संकेत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सिंध, पंजाब एवं राजस्थान के क्षेत्रों में कृषि तथा पशुपालन के विकास हो चुका था। अभी तक यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं हो सकी है कि सिंधु सभ्यता के नगरों का इन ग्राम्य संस्कृतियों से कोई कैसे और क्यों विकास हुआ। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब तथा राजस्थान के क्षेत्रों में विकसित होने वाली ग्रामीण संस्कृतियों का संपर्क पश्चिमी एशिया की ग्राम्य संस्कृतियों से रहा होगा। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई होगी जब ग्रामीण संस्कृतियों द्वारा नगरीय जीवन में प्रवेश करने हेतु आवश्यक उपादान जुटा। पृष्ठ संख्या 378 लिए गए होंगे। फलस्वरूप सिंधु घाटी में नगरीय सभ्यता बिल्कुल आसन्न हो गई होगी। ताम्र एवं कांस्य के उपकरण निर्माण की तकनीकी जानकारी ने आर्थिक जीवन में परिवर्तन की नवीन संभावनाओं का द्वार खोल दिया, परंतु बलूचिस्तान के पठारिक क्षेत्र के छोटे छोटे गांवों के निवासी इनका समुचित लाभ उठाने की स्थिति में संभवतः नहीं थे। इसलिए सिंधु की उर्वरा घाटी में स्थानीय ग्राम्य संस्कृतियों के तत्वों से नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु सभ्यता के मृदभांडों पर जिन पेड़ पौधों तथा पशुओं का अंकन मिलता है, उन्हें समझने के लिए सिंधु घाटी और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों से बाहर मेसोपोटामिया की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की मुहरों पर जिन पशुओं का अंकन है, वे सब इसी भूभाग पर विचरण करने वाले पशु थे। नवीन खोजों से यह परिलक्षित होता है कि सिंधु सभ्यता की जड़ें स्थानीय भूमि पर काफी गहरी थी। भारत और पाकिस्तान के बाहर की किसी भी चीज के संदर्भ में इसके विकास के मत का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं है। फिलहाल सिंधु सभ्यता का उद्भव इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों में खोजा जाना चाहिए। अन्य अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर संभवतः भविष्य में होने वाले पुरातात्विक अनुसंधानों से मिल सकेगा। सिंधु सभ्यता का विस्तार सन 1921-22 से आज तक होने वाली पुरातात्विक खोजों से सैंधव सभ्यता का दायरा काफी बढ़ गया है। अब हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि जिसे हम सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं, वह एक ऐसी सभ्यता थी जो विस्तार की दृष्टि से मेसोपोटामिया और मिस्र आदि की समकालीन सभ्यताओं की तुलना में अत्यंत विस्तृत थी। पाकिस्तान और भारत, इन दो देशों में इसका विस्तार मिलता है। अफगानिस्तान में भी सिंधु सभ्यता से संबंधित मुंडीगाक और सोतुगई दो पुरास्थल खोजे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब एवं सिंधु प्रांतों में इस सभ्यता के पुरावशेष मिले हैं। उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित क्वेटा तथा जॉब की घाटियों में सैंधव सभ्यता से संबंधित पुरास्थल स्थित नहीं है। दक्षिण बलूचिस्तान में सैंधव सभ्यता से के कई पुरास्थल स्थित हैं। ईरान की सीमा से पूर्व की ओर लगभग 40 किमी और अरब सागर से उत्तर की ओर लगभग 50 किमी की दूरी तक दस्त नदी के किनारे पर स्थित सुतकागेन डोर उल्लेखनीय है। इस पुरास्थल की खोज 1927 में आरेल स्टाइन ने की थी। सन 1962 में अमेरिका के पुरावेद जॉर्ज एफ डेल्स ने यहाँ पर उत्खनन कराया, जिससे दुर्ग तथा नगर के प्रमाण मिले हैं। सुतकागेन डोर से लगभग 130 किमी पूर्व दक्षिण में सादी कौर नदी के तट पर स्थित सुतका कोह डेल्स द्वारा खोजा गया एक अन्य महत्वपूर्ण पुरास्थल है। आरेल स्टाइन द्वारा खोजा गया डाबक कोट नामक पुरास्थल भी बलूचिस्तान के इसी क्षेत्र में पृष्ठ संख्या 379 पड़ता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा के अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी, चक पुरबानेश्याल आदि महत्वपूर्ण पुरास्थल है। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चान्हुदड़ो, आमरी कुटदीजी और जुडीरी दड़ो प्रसिद्ध पुरास्थल है। रेखा मानचित्र 7 सिंधु सभ्यता भौगोलिक विस्तार सौजन्य आलविन 1997। भारत गणराज्य के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर प्रदेश के जम्मू क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और गुजरात प्रदेश के क्षेत्रों को हम सैंधव सभ्यता के प्रसार क्षेत्र में रख सकते हैं। पंजाब में रूपनगर, रोपण, कोटला निहंग खान, चक 86, बाडा, संगोल, ढेर माजरा आदि से सैंधव सभ्यता से संबद्ध पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। 20वीं शताब्दी के विगत दशकों में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सैंधव सभ्यता के अनेक पुरास्थल खोज निकाले गए हैं। मिथातल, सिसवल, बड़ावली, राखीगढ़ी तथा कुड़ाल का उत्खनन किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर प्रदेश के जम्मू क्षेत्र में चेनाब के तट स्थित मांडा सैंधव सभ्यता के परवर्ती चरण से पृष्ठ संख्या 380 संबंधित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल है। सहारनपुर जिले में स्थित बड़ागांव तथा हुलास की गणना भी पर्वतीय सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों में की जाती है। उत्तरी राजस्थान की सरस्वती, वर्तमान घग्घर और इसकी सहायक दृशदवती, वर्तमान चौतंग की घाटियों के क्षेत्रों का सन 1950 से 53 में अमलानंद घोष ने व्यापक पैमाने पर अन्वेषण करके लगभग 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज करने में सफलता प्राप्त किया। इनमें गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालीबंगा नामक पुरास्थल पर भी पश्चिम में गढ़ी और पूर्व में नगर के दो टीले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की ही भांति विद्यमान है। ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के निर्देशन में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप प्राक हड़प्पा, प्री हड़प्पन और हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष खोज निकाले गए हैं। गुजरात प्रदेश का भी सैंधव पुरास्थलों की खोज के लिए व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 40 से अधिक पुरास्थलों पर सैंधव पुरावशेष एवं पुरानिधियां मिली हैं। प्रमुख पुरास्थलों में रंगपुर, लोथल, पाडरी, प्रभास पाटन, रोजरी, देशलपुर, कुंतासी, शिकारपुर, नगवाडा, मेघम, तेलोदे, भगतराव, सुरकोटदा और धौलावीरा का उल्लेख किया जा सकता है। रंगपुर, लोथल, कुंतासी, सुरकोटदा, रोजदी एवं नगवाडा का अपेक्षाकृत व्यापक पैमाने पर उत्खनन किया गया है। धौलावीरा का उत्खनन चल रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश के दायमाबाद नामक पुरास्थल के उत्खनन से मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर चिरपरिचित सैंधव लिपि के 3 चिन्ह अंकित मिले हैं। सिंधु लिपि अंकित मिट्टी के 2 मुहरें मिली हैं। कांस्य धातु के खिलौने मिले हैं, लेकिन जब तक पर्याप्त एवं यथेष्ट साक्ष्य नहीं मिल जाते हैं, सैंधव सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सैंधव सभ्यता का प्रसार क्षेत्र पाकिस्तान और भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और गुजरात तक मिलता है। इस सभ्यता के सबसे पश्चिमी पुरास्थल सुतकागेनडोर से पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर की दूरी लगभग 1600 किमी है। उत्तर में स्थित रहमान डेरी से दक्षिण में स्थित भगतराव की दूरी लगभग 1400 किमी है। सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति। सिंधु सभ्यता एवं ऋग्वैदिक संस्कृति में एकमात्र साम्य यही है कि दोनों को कांस्य काल से संबंधित माना जा सकता है। अत्यंत समुन्नत नागर सभ्यता होते हुए भी सिंधु सभ्यता में लघु पाषाण उपकरणों का प्रचलन था। विभिन्न प्रकार के उपकरणों से निर्माण के लिए ताम्र एवं कांस्य धातुओं का और आभूषण बनाने के लिए सोने तथा चांदी का उपयोग किया जाता था। लोहे के विषय में सिंधु सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग धातु के सामान्य पृष्ठ संख्या 381 अर्थ में किया गया है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचलन हो जाने पर तांबे को लौह अयस तथा लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति में कतिपय अंतर दृष्टिगोचर होते हैं। जॉन मार्शल और कतिपय अन्य विद्वानों ने इस अंतर को इस प्रकार से स्पष्ट किया है। एक, सिंधु सभ्यता वैदिक आर्यों से पहले की प्री आर्यन तथा आर्येतर है, नॉन आर्यन है। दो, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें नगरों के निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। स्वच्छता एवं सफाई हेतु ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। इसके विपरीत वैदिक संस्कृति विशुद्ध ग्राम्य संस्कृति थी। वैदिक काल में मकान घास फूस तथा बांस बल्ली के बनाए जाते थे। तीन, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित तथा अपरिचित थे, जबकि अश्व आर्यों का एक विशिष्ट पालतू पशु था। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर व्याघ्र तथा हाथी दोनों का यथेष्ट रूप में अंकन मिलता है। वेदों में व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है। हाथी से भी आर्य भली भांति परिचित नहीं प्रतीत होते हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर ककुद मान तथा ककुद रहित बैल का अंकन मिलता है। बिना डील वाले बैल के सामने नाद बना हुआ मिलता है। संभव है कि इसका धार्मिक महत्व रहा हो। आर्य बैल के स्थान पर गाय को अधिक आदर एवं महत्व देते थे। चार, सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति एवं लिंग पूजक थे। मोहन जोदड़ो, हड़प्पा, चान्हुदड़ो और बाड़ावली से मातृदेवी की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वैदिक आर्य यज्ञ याग के माध्यम से देवताओं की उपासना करते थे। वे लोग अपने देवताओं की मूर्तियों का निर्माण नहीं करते थे। आर्यों के देवमंडल में देवों की प्रधानता थी। देवियों का स्थान गौड़ था। पांच, सिंधु सभ्यता की मुहरों आदि पर अंकित लिपि से यह स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की अपनी एक विशिष्ट लेखन शैली थी, किंतु आर्यों के संबंध में अनेक विद्वानों की ऐसी धारणा है कि वे लेखन कला के से अपरिचित थे। पठन पाठन की मौखिक प्रणाली का प्रचलन था। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 20वीं शताब्दी के विगत 3-4 दशकों में सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों के जो उत्खनन हुए हैं उनसे कतिपय नवीन साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। लोथल कालीबंगा तथा सुरकोटदा के उत्खननों का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है। लोथल एवं कालीबंगा के उत्खननों से अंडाकार तथा आयताकार अग्निकुंड मिले हैं। ऐसी स्थिति में सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति के पारस्परिक संबंध के विषय में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता के नगरों तथा गांवों के ध्वजावशेष प्रायः टीलों के रूप में मिलते हैं। आजकल नगरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अथवा किसी बस्ती को उसकी प्रतिवर्ग किमी जनसंख्या के घनत्व के आधार पर नगर कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 382। इसके अतिरिक्त औद्योगिक गतिविधियां, कल कारखाने एवं अन्य सार्वजनिक महत्व की संस्थाएं इनके स्वरूप का निर्धारण करती हैं। सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि नगरों की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है। फेयर सर्विस नामक विद्वान का अनुमान है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या लगभग 41,250 रही होगी। हड़प्पा दुर्ग क्षेत्र को छोड़कर की जनसंख्या 23,544 आंकी गई है। जनसंख्या संबंधी उपर्युक्त आंकड़े अनुमान परक हैं। सार्वजनिक महत्व की विशिष्ट इमारतें, लेखन कला के साक्ष्य आदि के आधार पर कांस्य काल की बस्तियों को नगर माना जा सकता है। अत्यंत विस्तृत भूभाग में फैली हुई सिंधु सभ्यता में कतिपय बड़े बड़े नगर, अनेक कस्बे तथा बहुत से गांव रहे होंगे। पुरातात्विक अन्वेषण तथा उत्खनन के परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता के नगरों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो चुकी है। कस्बों तथा गांवों के संबंध में बहुत कम साक्ष्य उपलब्ध हैं। सिंधु सभ्यता के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हो चुकी है उसके आधार पर उसकी विशेषताओं का निरूपण किया जा सकता है। पश्चिमी एशिया और मिस्र का कांस्य काल की सभ्यताओं की समकालिक तथा कुछ अर्थों में समता रखते हुए भी सिंधु सभ्यता की मूल प्रकृति विशुद्ध रूप से एक स्थानीय सभ्यता की थी। कतिपय क्षेत्रीय विशेषताओं एवं अंतरों के होते हुए भी सिंधु सभ्यता के अनेक पक्षों में प्रायः एक अद्भुत समरूपता दृष्टिगोचर होती है। विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं की ही भांति ताम्रपाषाणिक सभ्यता होते हुए भी इसके रहन सहन की विधाएं अत्यंत समुन्नत थी। इस सभ्यता के नगर निवेश, सुव्यवस्थित गृह निर्माण, सड़कों, जल निकास के लिए ढकी हुई पक्की नालियों की सुंदर व्यवस्था, मूर्तिकला, मुहर निर्माण कला, विशिष्ट चित्राक्षर लिपि तथा मृदभांड कला में उल्लेखनीय समरूपता पाई जाती है। रेखांकित करकेतन एवं सिलखड़ी के मनके, फ्लिंट तथा चर्ट के बने हुए लंबे आकार के ब्लेड और तिकोने मृतपिंड अन्य विशिष्ट पुरावशेष हैं। नगर निवेश कालीबंगा तथा कोडडीजी की प्राक सैंधव बस्तियों में किलेबंदी तथा भवनों के योजनाबद्ध निर्माण के यद्यपि कुछ साक्ष्य मिले हैं, तथापि नगर निवेश टाउन प्लानिंग को सिंधु सभ्यता की ही प्रमुख विशेषता माना जाता है। सिंधु सभ्यता के नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। सिंधु सभ्यता की नगर योजना में काफी हद तक समरूपता होते हुए भी कतिपय स्थानीय विशेषताएं तथा क्षेत्रीय विभेद मिलते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा सुकागेन डोर के नगर निवेश में मुख्य बातों में प्रायः समानता मिलती है। इन पुरास्थलों पर पूर्व और पश्चिम दिशा में दो टीले मिले हैं। पूर्व दिशा में विद्यमान पृष्ठ संख्या 383 रेखाचित्र 8 मोहनजोदड़ो दुर्ग विन्यास सौजन्य व्हीलर 1968। टीले पर नगर या आवासक क्षेत्र लोअर सिटी के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिम के अपेक्षा के तो ऊंचे किंतु छोटे टीले पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा के दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे और इनके आकार समलंब चतुर्भुज की तरह थे। रक्षा प्राचीर में बुर्ज, टावर्स तथा पुश्ते बेस्टन्स बने हुए थे। कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से युक्त था। यद्यपि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के नगर क्षेत्र से अभी तक इस प्रकार के साक्ष्य पृष्ठ संख्या 384 रेखाचित्र 9 मोहनजोदड़ो नगर विन्यास सौजन्य व्हीलर 1968 नहीं मिले हैं। लोथल और सुरकोटदा में अलग अलग दो टीले नहीं मिले हैं। इन दोनों नगरों के संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। रेखाचित्र 10 कालीबंगा दुर्ग तथा नगर विन्यास सौजन्य थापर 1995 पृष्ठ संख्या 385 सिंधु सभ्यता के नगर क्षेत्र से में सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंदर मुख्यतः महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन तथा अन्नागार स्थित थे। मोहनजोदड़ो में किले के भीतर पुरोहित आवास, सभा भवन, अन्नागार और विशाल स्नानागार स्थित थे। हड़प्पा में दुर्ग टीले का समुचित ढंग से उत्खनन नहीं हुआ है। रेखाचित्र 11 धौला बीरा दुर्ग एवं नगर विन्यास सौजन्य विस्ट 1996 इसलिए इसके भवनों के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है। हड़प्पा के दुर्ग के बाहर उत्तर दिशा में स्थित एक टीले पर अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे तथा श्रमिक आवास के प्रमाण मिले हैं। लोथल का दक्षिणी पूर्वी भाग दुर्ग क्षेत्र था, जिसमें अन्नागार अथवा मालगोदाम स्थित था। इसी क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण भवन रहे होंगे, क्योंकि एक कतार में बाहर स्नान घर और ढकी हुई नालियां मिली हैं। कालीबंगा के दुर्ग को एक लंबी दीवार से उत्तर दक्षिण दो भागों में विभाजित किया गया था। कालीबंगा के दुर्ग क्षेत्र के दक्षिणी आधे भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए आयताकार चबूतरे मिले हैं। इनमें से अधिकांश चबूतरे टूट फूट गए हैं, किंतु एक चबूतरे पर एक पंक्ति में 7 अग्निकुंड मिले हैं, जिनमें पशुओं की हड्डियां, श्रृंग तथा राख मिली हैं। इनके धार्मिक महत्व के विषय में कोई संदेह नहीं है।